और एक बात का ध्यान और रखना लोगों, अगर प्यार तुम लोग करना चाहो तो प्यार करने से पहले गुरु जरूर बना लेना, बिना गुरु के प्यार नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरु बनाने कहां जाएं, प्यार के लिए गुरु बनाने कहां जाएं, गुरु तुम्हारे घर में ही है। कौन? दूध और पानी। जब पानी को दूध में मिला दिया जाता है तो पानी का रंग कैसा हो जाता है? सफेद। पानी कहने लगा, बारे भैया प्रेमी हो तो तेरे जैसे हो, तूने मुझे अपने में मिलाए कि अपन जैसो बना लो। हलवाई जब खरीदने आया तो पानी दूध के भाव में बिक गया। पानी कहने लगा, बारे भैया प्रेमी हो तो तेरे जैसे हो, तूने मुझे अपने में मिलाओ, अपने जैसो बनाओ, अपने भाव में बिकाइयो लो। हलवाई ने दूध लाओ सो भट्टी पे चढ़ा दो, पानी कहने लगो, भैया तूने मुझे अपने में मिलाया, अपने जैसा बनाया, अपने भाव में बिकाया, अब हम तुझे नहीं जलने देंगे, हम प्यार का बदला देंगे, पहले हम जलेंगे। और पानी का जलना शुरू हो गया। जो पानी जल के नष्ट हुआ, एकदम से दूध ने उफान भरी, ये भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगा। हलवाई ने दिल की हालत समझी और दो दो चुल्लू पानी मारो सो दूध बैठ गयो, क्यों बिछड़ो बहुत दोस्त मिल गयो। याद रहे लोगो, प्यार याद करना है तो दूध और पानी से सीखो। आज रुक्मिणी ने क्या खत लिखा है अपने हृदय सम्राट भगवान कन्हैया के लिए।
रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही, रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ये जी जाके दिल में, हमें जाके दिल में बहुत तुम लाली, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी धरवा जैसे गिरी रहे जी। ये जी मोपे कोपी, हम बे मोपे कोपी की जड़ो शिशु पाली, रोई रोई पाली रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। के तो गले में बैया घन श्याम की, के तो पीरन की बली है चले बाली, रोई रोई बाली बिटिया लिखी रही। चिठिया भेजू हम तो जाके हाथ में जी, तोते आए रो हम बे तोते आए रो है दिन आधार, रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ए जी जाते दिल में, हम बे जाते दिल में, हम बे जाते दिल में अभी के माला, रोई रोई पाती लिखी।
भगवान श्याम सुंदर शिष्यपाल आ गया है और हमें जल्दी ही ले जाना, इस तरह चिट्ठी लिख करके बंद करके बूढ़े ब्राह्मण को दे दी है रुक्मिणी ने। वहीं आ जाइए लोगों। आज बूढ़ा सा ब्राह्मण रुक्मिणी का संदेश लेके दोहरिका के लिए प्रस्थान करता है।
चल दिए ले खबर को, चल दिए ले खबर को, दोहर का जाने लगे, चल सावन को दोहर का जाने लगे चल दिए ले पत्र को चलते चलते थक गए
बूढ़ा है ना बूढ़ा
चलते चलते थक गए तब विप्र घबराने लगे चल दिए ले पत्र को
लेकिन याद है अब ब्राह्मण देव घबरा रहे हैं क्यों चला नहीं जाता और जब मानव को कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता तब वो एक गीत गाता है
अपनो दिखाई कोई ना दयो तब दिल में सकुचाने लगे याद करके श्याम की याद करके श्याम की आधार गीत गाने लगे
चलो ना जाते और चलो ना जाते तो ब्राह्मण जी एक गीत गान लगे बुढ़ापो सबसे बुरो है लोगो इनकम टैक्स से भी ज्यादा बुढ़ापे में दुख है याद रहे कौन सा गीत गायो जितने लोग बैठे हैं उस गीत को सभी बहुत जोर से गाएंगे कौन सा गीत गा रहे हैं ब्राह्मण देव जब थक गए सब लोग कोई चुप नहीं बैठेंगे भगवान को गीत सब गाएंगे प्रेम से क्योंकि सभी बुढ़ापे के उम्मीदवार हैं बुढ़ापा सबको ही आएगा जब हम गाएं उसके बाद आप लोग दोहराएं उसको
मोए भी समकी बिटिया ने भेजो है सोनो पंडित जी समकी बेटी ने भेजो है सुनो सावरिया समकी बेटी ने भेजो है सुनो
हम देखते हैं बहुत से लोग चुप बैठे हैं भगवान का कीर्तन नहीं बोल रहे बोलो बोलो भगवान का कीर्तन में कोई टैक्स नहीं लगता तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम हो और छवि खोल देना
मुए भी समकी लाड़ो नि भेजो हे सुनो सामचा चलत चलत मेरी पैया पिरानी
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 आई गो बुढ़ापा ढल गई जवानी
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 आखर को बुरी मेरी उमरिया सुनो सामरिया
आखर को बुरी
मेरी समझी बेटी ने भेजो है सुनो सावरिया मोर भी समझी लारो ने भेजो है सुनो सावरिया सुंदर देखिए तू सरोवर की छाया
सुंदर देखिए सरोवर की छाया
नीचे
जमाया
तो सोया हाय हाय सोया और की कामरिया सुनो सामरिया
तो सोया कामरिया
मोए भी समझी
सो गया वो बूढ़ा सा ब्राह्मण। भगवान दोहर का अधीश ने देखा कि मेरी प्राण प्यारी को भेजो वह विप्त तो मार्ग में ही सोए गयो। अपने दूतन को भेज के भगवान श्याम सुंदर ने वह ब्राह्मण को वहां से उठवाए के अपनी बगीची में लेटवा लियो। जब ब्राह्मण की आंख खुली, अरे भैया सर्व सोने की दोहर का बनी। आज ब्राह्मण देव जिस समय पहुंचे यादवों की कचहरी में, बंदियों सभी यदवंशियों ने उठ करके ब्राह्मण देव का आदर किया, बिठाए लो। कुशल पूछी, लेकिन भोजन कराने के बाद ये ध्यान रहे तुम्हारे यहाँ कोई हितू रिश्तेदार आ जाए तो उसे पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक उसे भोजन न करा दो, क्योंकि वहाँ तो कोई दुर्घटना हो गई और वो 20 कोस से बेचारा हारा थकाया, तुमने पहले कुशल पूछनी शुरू कर दी, उसने दुर्घटना बता दी, घर में रोआ पीटी मचने लगी, भाई कोई पानी की पूछैया ना। पहले तो तुम उसे भोजन कराओ, बाके बाद में कुशल पूछो। तो अब बलराम जी बोले, ब्राह्मण देव तुम कहां से आए हो? जवा देव में कुंदनपुर से। अरे कुंदनपुर में तो राजा भीष्मक रहते हैं। हाँ कहो कुशल तो है? हाँ कुशल है। चारों तरफ देखने लगे पंडित जी। बलराम कहने लगे क्या देख रहे हो? ब्राह्मण देव कहने लगे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों में भगवान कन्हैया कौन है? बलराम जी कहने लगे वो कोने में बैठो कालो कलूटो सब वही श्याम सुंदर है। जो पंडित जी ने भगवान कन्हैया को देखो मन ही मन में कान लगे मोड़ी ठगी आई है, हाँ काले कलूटे पे मर बैठी। और भगवान ने तिरछी चितवन करके देखो अल्लाह उस पंडित जी कान लगे लो जी तो भेड़ा है। लेकिन जो ओठन पे मुस्कुराहट थिरकी पंडित जी वो मुस्कुराहट को देखकर मानो उनके अंतःकरण को छू गई। पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं श्याम सुंदर काले जरूर है लेकिन छवि कितनी है। टकटकी लगा गए पंडित जी। बलराम कहने लगे पंडित जी ऐसे टकटकी लगा रहे कर नजर मारोगे मेरे श्याम को? चौंक पड़े ना ना मैं आपके श्याम से एकांत में बात करना चाहता हूं। अच्छा ले जाओ कन्हैया जाओ एकांत में, दक्षिणा अक्षिणा की बात करेंगे एकांत में ले जाओ। पंडित जी को एकांत में ले गए श्याम सुंदर। रुक्मिणी बारी चिट्ठिया पंडित जी ने श्याम को गाही। श्याम सुंदर ने चिट्ठी पढ़ी तो जवाब दिया दे तो कोई लड़की का पत्र है। जवाब दियो हाँ राजा भीष्म की बिटिया रुक्मिणी है और तुम्हें बहुत प्यार करती है। बाको भैया रुकुम है वाने अपने साले ससुराल को बुला लियो और जो कल तक श्याम सुंदर तुम न पहुंची तो लड़की तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे जाओ हम नहीं जा पाएंगे, लड़की से कह देना शिषपाल के घर चली जाए वो वहां रानी बन के रहेगी और अगर हम उसे ले आएंगे तो हमारे यहाँ ग्वालिनी बजेगी। एकदम पंडित जी चीख पड़े श्याम मर जाएगी लड़की, वो तुम्हें प्यार करती है, 3 दिन हो गए उसके पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। पंडित जी कहने लगे तो भगवान कन्हैया बोले हम चलवे को तो तैयार है लेकिन मतलब एक है का कि हम बहुत छोटे हते, गांव की लड़कियां माखन बेचने जाती हम क्योंकि चुनरिया फाड़ देते क्योंकि मटकियां फोड़ देते थे, हम इतने बदनाम हो गए कि अब यादव लोग हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर तुम हमें लेके चलना चाहते हो तो यहां से जा कचहरी में बैठ जाइए कहियो अब तो हम चलें, सब यादव लोग तुम्हें विदा करने फाटक तक चलेंगे और जो लोग फाटक लो पहुंचो तो लोग खांस के 2-4 बार खोपड़ी को पकड़ के बैठियो। सो हम बलराम भैया से कहें भैया पंडित है जब चलो ना जाते हो, सो बलराम कहेंगे जा रथ में बैठा रे घरे करे आओ, हम तुम्हें रथ में बैठा रे घरे करें उन्हें तो ब्याह और गोनो। अकल बता दी कन्हैया ने। पंडित जी आए कचहरी में बैठ गए और पंडित जी कहने लगे पंडित जी बोलो बात सुनो यदुवंशी श्रेष्ठ कहते हैं, यदुवंशी श्रेष्ठ कहते हैं आज तलक यादव कुल में कछु दोष नजर न आते हैं। आज तलक यादव कुल में कछु दोष नजर न आते हैं। और क्या कहा हमको जल्दी हम तो अब घर को जाते हैं, हम तो अब घर को जाते हैं, सब यदुवंशी उठ कर के ब्राह्मण को सीस झुकाते हैं। दक्षिणा ब्राह्मण देव कहने लगे, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, अब हमें चलन दो। सब यादव लोग पीछे है गए, मेरे बंधु पंडित जी 10 कदम चले और कैसे करने लगे, बैठ गए। बलराम कहने लगे, क्या बात है पंडित जी, चलो चलो चलो। और तलो कन्हैया पीछे लाते बोले, भैया पंडित बूढ़ो है, जब चलो नहीं जाते, और कहूं जो ब्राह्मण मरियो तो अहीन ब्रह्म हत्या लगे। बलराम कहने लगे, तो मैं क्या करूं। श्याम सुंदर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो जब बूढ़े ब्राह्मण को रथ में बिठाल कैसे घर छोड़े। बलराम कहने लगे, कन्हैया 2 सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ, सो हवा से तेज उड़ने वाले हैं, और इतना ध्यान रहे पंडित को घर छोड़ के सीधे घर आना, रास्ते में कोई लड़की तुम्हें माखन का लोभ देती रहे, अब तुम खड़े मत होना, तुम सियाने हो गए हो। अब कन्हैया बोले, तुम हमें पठे तो दो, हम तो कहूं नकती थे बात ना करें। जाओ 2 सफेद घोड़ों वाला रथ भगवान श्याम सुंदर ने सजाओ और पंडित जी को बैठा लो, और जो लोग रथ दोहरिका में चलते रहो, चलो धीरे 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 धीरे, हाय जो दोहरिका ते रथ ने करो का भाव, और अरे अरे उड़ियो सर रे सो रग में पहुंचो जाई। और आसमान में पंडित पर तो गए गवाई, महाराज पंडित दिल में गए दहलाए, और ऊपर से जो गिरे तो हाथी पसली मिली है ना, पंडित मन ही मन में गए अहीर ध्यान लो पर, पंडित मन ही मन में गए अहीर ध्यान लो पर, पंडित मन ही मन में गए अहीर ध्यान लो पर। लोगों इतनी तेजी से रथ उड़ा है कि ब्राह्मण देव को कलेजो कपिगो, जो लोगों ने होश आओ तो लो भगवान ने कुंदनपुर की सीम दबा ली और रथ को नीचे उतार लिया। पंडित जी कितनी दूर है वो कुंदनपुर? अब पंडित जी बोले, रथ को नीचे नीचे चलाओ तो दो कोस रहेगा। भगवान कहने लगे, डर गए हो, चिंता मत करो, दो कोस रह गया। हाँ एक बात बताओ, शिषपाल की सेना आ चुकी थी? पंडित जी कहने लगे, हाँ कितनी सेना थी? 11 अक्षौणी। भगवान कहने लगे, हुई हो ब्याह? अरे मैं अकेला आया हूँ, 11 अक्षौणी सेना का मुकाबला कैसे करूंगा, लड़की से जाकर के कह देना कि वो शिषपाल की दुल्हन बनकर चंदेरी में चली जाए। एकदम से पंडित जी चीख पड़े, श्याम मर जाएगी लड़की, वो तुम्हें प्यार करती है। भगवान कहने लगा, अगर लड़की पर तुम्हें ज्यादा तरस आ रहा है तो गांव के बाहर हमें दे दो, तो हम लाए जाए बबितरिया, गांव के बाहर दे दो हमें। पंडित जी कहने लगे, हाँ पूरा पश्चिम और दक्षिण 3 दिशाएं घिरी हैं, उत्तर वाली दिशा खाली आलोपा भवानी का मंदिर है, वहां रुक्मिणी पूजा करे, तुम तो रथ ले चलो पूजा की तरफ, और हम रुक्मिणी को पूजा के बहाने भाई मंदिर में भेज देते हैं, सो हुए रथ में धरियो ले जाइयो। भगवान ने रथ कर दो मंदिर की तरफ और पंडित जी हुई है घर की तरफ। इधर क्या हुआ लोगों, रुक्मिणी आंगन में बैठी सिसक रही है, बूढ़ा ब्राह्मण ना पहुंचे होएगो, कल मेरी भामरे पड़ जाएंगे, परसों मैं चंदेरी में चली जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं जाऊंगी, और कैसे रोने लगी,
अरे दिल में नाने धीर रे धारूंगी, मर जाऊंगी मैं, मैं नीर धारूंगी, और मैं तो पानी में डूब के मरूंगी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं, अरे मैं तो आत्मघात करूंगी, और मैं खाए के जहर वाले मरूंगी। और हिला की भरी आई तीर रुक मिड़ की मार दो सोने ले वारद हमारे का, और मुरु मार दो तोर दहलिया के चुनिया छाड़ छाड़ हो जाए, मिल के कायरोले में पग के महल करारा खाई
मेरे नौजवान साथियों इधर तो रुक्मिणी शेषक रही है और तौलों का अभाव। अरे पंडित जी आ गए, कहो कहो मेरे श्याम सुंदर आ गए हैं, कितने यादव हमें लेने को आए हैं, कितनी फौज लाए। पंडित जी कहां लगे चुप रहे, हम तो जानता जन के तो मलूक हो या कालू कालू उठो धारो। रुक्मिणी कहने लगी नहीं पंडित जी, मेरे श्याम काले नहीं है, मेरे श्याम तीनों लोगों से निराले हैं। कितने लोग आए मुझे लेने को? पंडित जी कहां लगे एक रथ बामे दो घोड़ा और खुद यहाँ के रहो बाकी पूरे शरीर की 250 ग्राम सौदा है। एकदम जवाब दिया तो और कोई नहीं आया? नहीं आया। पंडित जी बोले अगर तू उसकी जान की खैर चाहती है तो पूजा के बहाने मंदिर में चली जा, कानों कान किसी को भनक ना हो, और रथ में बैठ के चली जा, क्योंकि चारों तरफ 11 अक्षौणी सेना लगी है। और एक अक्षौणी कितने का होता है लोगों? एक अक्षौणी 2,18,700 का होता है और सेना कितनी थी? 11 अक्षौणी। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी जा अब हम चल लीजिए, कैसे उन्हें कैसे उन्हें कह ले कि तुम जा। पंडित जी कहाँ लगे हाँ मतलब न करियो, अब जा न रोटी की न पानी की जाओ, ये जा लड़की चुटकियों चिड़ी उड़ा रही है, अरे हमें भूख लगी है। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आज मैं तुम्हें रोटी नहीं खवा पाऊंगी। क्यों क्यों आज भी रोटी नहीं खवाएगी तू? नहीं। क्यों? क्या बोली रुक्मिणी?
जो भोजन तुम्हें जमाए विप्रमोद दे बहुत हो जावेगी और मेरे कंठ की सवारी है बा मंदिर ते रम जावेगी। और हम तो जावे चली के पंडित सासु लिया घर आइयो रे, मेरे आंगन में बैठ के पंडित भोजन जीवर खाइयो रे।
मेरी सासु के घर आइयो, फिर मैं तुम्हें खूब फराएगी, खूब अच्छे अच्छे भोजन कराऊंगी, खूब अच्छे अच्छे। और क्या बोली?
और पंखा ले हाथन में पंडित भोजन तुम्हें कराऊंगी, आधारक बुला के द्वारे पे और बाहु के गीत सुनाऊंगी। तू है उपकार का पंडित बदलो सब चुकाऊंगी। और जो आधार न मिले तो कैसे तो राखो रखी मगवाऊंगी, और समय धर के चैप तुम्हें गीतन को स्वाद चखाऊंगी।
चिंता मत करो, पंडित जी कहने लगे तो ठीक है मेरा भोजन उधार है, जब तू ससुराल पहुंच जाएगी उस वक्त मैं आऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कानों कान किसी को भनक ना हो। पंडित जी चले गए। जब रुक्मिणी चुप चली है श्याम सुंदर से मिलने के लिए तो आत्मा से एक झनकार उठी, ओरी पगली जिस मैया ने तुझे 9 महीने अपनी उदर में रखा, उस मैया को भी धोखा दे के जा रही है। रोने लगी रुक्मिणी, जब कोई लड़की ससुराल को जाती तो अपने मैया और बबुला से मिलकर जाती है, मैं कितनी किस्मत की खराब हूँ कि मैं अपनी मैया से कह भी नहीं सकती हूँ कि मैं ससुराल जा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे बात भले ही खुल जाए, लेकिन मैया से मिलकर जाऊँगी। थाली लेकर के नौजवान साथी उस कमरा में पहुंची है रुक्मिणी, जिसमें रुक्मिणी की माँ आंखों से पट्टी बांधे ओंधी लेती। माँ 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 हाँ रुक्मिणी माँ, अपने आंखों की पट्टी खोलो माँ। क्यों? नहीं बना रंग, मैं अत्याचार देख नहीं सकती, मुझे यूं तरफ न डाल रुक्मिणी, मुझे मत खोल मेरी आंखें मत। रुक्मिणी कहने लगी नहीं माँ आंखें खोलो। आगे झपट के रुक्मिणी ने दोनों आंखें खोल दी। माँ तुम क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत में रोना लिखा है माँ। माँ मेरी भामरे का पड़ जाएंगी कल, और मैं ससुराल कब चली जाऊंगी परसों। माँ मैं पूजा करबे को जा रही, लेकिन मेरे मन ऐसे हो तो कि तेरे गले से लग के खूब रोए लें। रुक्मिणी की माँ कहने लगी का पागल होगी, अब तो रोए तो आंखें सूज गए, पर जब जाए तो वहीं रोए ली। अब रुक्मिणी बोली, अम्मा तुम जाए सोच लो कि हम अब ही जाती, लेकिन मुझे रोए लें कारू चकुरची रही है। अम्मे ना पतो इधर नहीं बेटियां का नाटक रचाती, हाय बतो गले ते लगी आई और रोन लगी, कैसे रोए रही।
दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के।
और क्या बोली,
दुख सुख की का मैया सो कर मोए पुत घर के गोद में ले ले, कर ले आखिरी प्यारी दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के।
लड़की 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 ए
लड़की छोड़ मेरे गले को।
नहीं माँ मुझे रो लेने दो। और क्या बोली रुक्मिणी, अम्मा के गले तो लटकी आई लटकी, रोए खूब रही है, लेकिन कन्हैया तो मिलवे के पेट में लड़ुआ फूटा तह लड़ुआ, अम्मे देखेबे को रोए रही।
जोन में बबुला की गलियन में खेली अम्मा, बबुला की गलियन में खेली, संग रही मेरी संग की सहेली, सब कुछ चल बई बिसारी दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के।
लड़की लड़की लड़की
ए लड़की छोड़ मेरे गले को। नहीं माँ रो लेने दो। ओ मैया रक्षा बंधन पे मोए बोले भैया, छोटे भैया को मेरे घर पठाइए, ले भाई वे आइए आधारी दुल्हिन बन के चली ससुराल, दुल्हिन बन के चली ससुराल।
लड़की छोड़ मेरे गले को। एक घंटा हो गया रो रही है, ये ध्यान रहे। ए तीन चार लड़कियां और चली जाओ रुक्मिणी को मंदिर में ले जाओ, और जल्दी पूजा करा के जल्दी लाओ, ये रोए नहीं। हाँ तीन चार बितरियां ठारी हो गई, और मारी गुस्सा के मारे रुक्मिणी को पेट भरिया, ये नकते हुन कछु उदम न मचा दे, बे अकेले ही तो हैं। अब क्या बातें करने लगी सखियां,
एक सहेली कह रही सुनो, बेना मेरी सुनो, आली मेरी सुनो, बुइया मेरी, मेरी बहन रही भेराई जी,
सुखाई अब चली है रुक्मिणी मंदिर के लिए। कैसे जा रही है?
धीरे धीरे रुक्मिणी चल भाई दे दे भमर कलिन पे पामुरे दे दे चंप कलिन पे
धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे रुकी मेरी जाते जाता चला दी मनुरिया भाई मेरे ख्याल जाता चला दी मनुरिया की सहेली कह रही जाको पाओ सबाओ उठ रहा है जाको पाओ सबाओ रुक मिल भाजत जाती है ये कुकौआ उड़िया मूड़त है ये कुकागा उड़िया
जब उड़ो तो रुक्मिणी कौआ से कहा बोली
कागा सब तन खाइए चुन चुन खाइए मेरो मास दुने ना मत खाइए मोई पिया मिलन की आस रुक्मिणी भाजती जाती है जाए श्याम मिलन की आसे जाई श्याम मिलन
मंदिर में जाकर के पहुंची लोगों और रुक्मिणी अंदर मंदिर में घुस गई देवी की पूजा की है। तब तक भगवान कन्हैया ने मंदिर के पीछे से रथ को हटा करके सामने खड़ा कर लिया। जो रुक्मिणी मंदिर में से निकली चारों लड़कियां साथ निकली हैं। अब भगवान कन्हैया रथ में कान लगे बाहरी पंडित हमने एक बुलाई बने पांच पठे नहीं। अब का कहन लगे
जब कौन सी मेरी रुक्मिणी है समझ में नहीं मेरी आवे रथ में बैठा मोहन मन ही मन में साधू जावे और कौन सी मेरी रुक्मिणी की न सोरथ में ले बैठार
क्या कह रहे अब हम कौन 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 ले जावे सब ये कई रूप खड़ी है अब हम कौन 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 ले जावे सब ये कई रूप खड़ी है अब हम कौन कौन
कौन रूप खड़ी है अनु सब ये कई रूप खड़ी है के अब हम कौन कौन कौन
ये बात बोले बिटोर दिए लोगों
हनुमान पर्वत पे पहुंचे दिल में फिक्र बड़ी है एक ही रंग की सब बूटी अब नहीं पहचान पड़ी है बड़ी अब कौन 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 ले जावे सब एक ही रूप खड़ी है अब हम कौन कौन कौन
इधर रुक्मिणी ने सोची कि कहूं ऐसो ना हो श्याम सुंदर मेरे धोखे मेरी सहेली को धरे ले चले जा तो जोन हाथ में कंगन बंधो सो हाथ उठा के सकीन से कान ले ओरी बहना जे कौन की पौधे हैं जे अस्तुथामा की जे सुशर्मा की जे भूर्शर्मा की जे दंत्र बकर की और जो हाथ कंगन को कन्हैया ने देखो समझिए जे ये चमक छलो। अब कन्हैया बोले ए लड़की इधर आ। एक लड़की कहने लगी कौन हो तुमको शर्म नहीं लगती या मेरे साथ में भीषम की लड़की है कौन रहता तुम? और रुक्मिणी बोली तू चुप रह न कटे बात मत हो रही तू बीच में दादी बनती ना काटे ली हाँ भाई बेटर यह समिति की ठाड़ी हुई बाय ना पता कि ना तक सब बनो बनाओ लड़कियां चुप हो गई। अब भगवान के सामने थोड़ी बढ़त भाई रुक्मिणी बोली तुम कहाँ रहते हो? भगवान कहने लगे हर जगह। अब पिछले बेटरियां कान लगी ओरी बहना बना सिर रही है जिस दिन पूछी कहाँ रात बुका तो हर जगह लेकिन वो नहीं जानती कि श्याम सुंदर के लिए कोई जगह खाली नहीं वो सतराचल में व्यापक है जब अवतारी है। रुक्मिणी बोली तुम्हारी कमर में क्या है? बंसी। बंसी तुम बजा लेते हो? कन्हैया कहने लगे बहुत अच्छी। रुक्मिणी कहने लगी तुमने के मुझे सुनाए दे। कन्हैया कहने लगे हूँ आज नहीं क्यों? जानते हैं श्याम सुंदर जो हमने बजाई बसुरिया, चार और ही दुश्मन बैठे सब तोड़ डाले पसुरिया। कान लगे आदमी रुकमणी कान लगी, तुमने कहा मुझे दिखाई दो। भगवान श्याम सुंदर बोले मैं बंसी तुमको दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी बंसी इतनी विलक्षण है कि जब बंसी को जो सुनता है देखता है वो उस पर मुग्ध हो जाता है। अब रुकमणी बोली सो कितनी कीमती बसुरिया छाती तो दुकान धरे हैं। तो भगवान बोले सुनो कीमती पूछ रही हो तो, कुमेर घड़ा में एक पेड़ जमो में बंसी के नाम कटाई धरी है, शेषन काटी महेशन पेड़ी ब्रह्मा ने सन काद करी है, विष्णु ने जम छेद करे आधार चैतन्न देखी घरी है, सो मांग रही देखन को मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। इतनी कीमती बसुरी है। कहन लगी तुमने के मुझे दिखाई दे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। भगवान कहन लगे कर दियो क्या? हाँ तो ले। भगवान ने ऐसा हाथ करो, रुकमणी ने हाथ बढ़ाओ। बहु का बोई भाव जो होना रहा तो सोई। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मारते नजर से देखा, और नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। भगवान ने झपट के बसुरिया तो अपनी गोदी में डाल लियो। क्या किया? ओ मनमोहन ने पकड़ी जाकी झाला की कलाई, भीषम की बिटिया रथ में भैया लइए जट पे खाई, महाराज बिचरिया मन में गई दहलाए, और ले जाओ ले जाओ बहना जिद्दी को गोलवाए। जो भगवान ने रथ में बैठा रो रुक्मिणी को बिचरिया भगी, और भगी बिचरिया थी मंदिर पे गई महलन की सूद लगाए, और राजा भीषम के आंगन में बिटिया गिरी समारोह खाए, और मैया बोली जब रुक्मिणी तेरी मोरी को दियो बताए, अब एक बिटरिया वो लल्लाई अम्मा सुन ले ताल लगाए। तो राजा भीषम के आंगन में लड़कियां गई, रुक्मिणी की माँ बोली रुक्मिणी कहाँ? अरे रुक्मिणी कहाँ? एक लड़की कहाँ लगी अम्मा अब कोई करिया करिया तो हाय जिंदगी को ले गो है, अब कोई करिया करिया तो साम बहना को ले गो है, अब कोई करिया करिया तो हाय जिंदगी को ले गो है। अब ले गो है अम्मा बहना को ले गो है, अब कोई करिया करिया तो गे अम्मा। तो रुक्मिणी की माँ ने पूछा रुक्मिणी कहाँ रुक्मिणी कहाँ? एक लड़की कान लगी मंदिर में पूजा कर भी गई सोमन कोई कालो कलू तो चलो आओ, और जिज्जी को हाथ पकड़ के रथ में धर लो। जिज्जी चुप धर रही उन्हें हाथ पाना ही फड़फड़ा है। एकदम से रुक्मिणी की माँ कहने लगी चुप रहो श्याम सुंदर की सभा और कोई नहीं चुप रहो। लेकिन भैया चुप कैसे रहे? तब तक रुकम आ गया कहने लगा चुप नहीं रहो रुक्मिणी का। एक लड़की कहने लगी मैं मंदिर में पूजा करने गई थी वहां कोई काला कलूटा चलाया और बहन रुक्मिणी को रथ में धर के ले गया। एकदम रुकम कहने लगा मैं जानता हूं जो हरामी का पिल्ला मेरी बहन को ले गया। उसने दही के धोखे चूना चाटा है, मेरी बहन को ले जाना लोहे के चने चबाना है, कंस नहीं आगा सुर बका सुर चारूर और मुष्टि को कुबलिया पीड़ हाथी नहीं जैसा तू मार के निकल जाएगा। और बंधुआ एकदम से रुकम ने 11 छोड़ी सेना सजा ली, और भगवान ने बा मंदिर से रुक्मिणी को रथ ज्यादा 2-3 खेत चलाओ और ठारो कर लो। रुक्मिणी कहने लगी जल्दी ले चलो। कहूँ भैया ना जा जल्दी ले चलो। भगवान कहने लगे चुप रहो 750 को घोड़ा उड़के आए थके ना जल्दी ले चलो। ऐसो भैया एक पुल बांधेगो और भैया तो लो चारों तरफ से भगवान श्याम सुंदर को रुकम की सेना ने घेर लिया। जो रुकम की सेना ने कन्हैया रुक्मिणी को घेरो सोई रुक्मिणी झपट के श्याम को पकड़ लो। कन्हैया अब क्या करोगे? कन्हैया कान लगे छोड़ छोड़ का पकड़ के पिटवाएगी हमको छोड़। और तब तक सामने रुकम पहुंच गया कहने लगा है कुत्ता आज खूब तू मेरे फंदे में फंसा है, अभी तक माखन चुराता रहा फिर औरतें चुराने का धंधा शुरू कर दिया। ठाड़ो रहिए तू नीच गमार रे ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए तू नीच गमार रे ठाड़ो रहिए, तो धर्म बीज ते फार रे ठाड़ो रहिए, बाय।
पर भैया
जितनी भोजे रोटी बंद समर की एक ही संगा के पड़िए अरदा रखते
क्या किया
जितनी भाजी रोटी ले दुश्मन की हरने उतने
उन्हीं के तेज तो छीन मेरे भैया काट की धरती पे लहे गिरा नौजवानों अकेले श्याम सुंदर ने 11 छोड़ी सेना को तहिस नहिस कर दिया और जो रुकुम ने देखा कि फौज समाप्त हो गई एकदम से रुकुम मैदान को छोड़ के भागा कहां के लिए शिशपाल के लिए
और रुकुम भादी और रण खेतन ते मरद सुन ले अर्ज हमारी ओ लगी कते दिस सपालौ की ता हमें रुकुम भोली आ जाई
क्या बोला रुकुम
ओ रुकुम कहा तू ऐसे सपालौ ते जीजा सुन ले कान लगा तुम तो सोए सुकन दिया में गुंडा बहने गा ओलेवाए और तब शिशपाल रुकुम ते बोलो जी जादी को हमें बताए और किए बोले गौरे हत्यारो हम बाजियत छोड़े नाए और तब रुकुम तो बोलन लागो जी जा दे करो अब नाए और तब शिशपाल जाबो ये उन्हें रहो जी जा फिक्र करो तुम नाए अब तो जी जा जी ना पड़िए दो लंग बापर जी कनु है अब तो जी जा जी ना पड़िए दो लंग बापर जी कनु है
एकदम से रुकुम कहने लगा रे होने वाले जीजा तुम तो यहाँ बैठे हो और जीजी को तो कृष्ण लिए जा रहा है शिशपाल कहने लगा जीजा गाओ कितनी दूरी जा तो बता वो बात है जीजा कह रहे हो वो बात है इधर तो शिशपाल ने अपनी 11 छोड़ी सेना सजा ली और ये द्वारका में बलराम पूछने लगे कन्हैया ब्राह्मण को करवेगा अब न आओ एक लड़का कहने लगो हमने अकेले में जाके जो उनकी बातें हो रही वो सुन लेंगे कल लड़की की चिट्ठी आई थी बलराम के दिमाग में हथौड़ा लगा राजा भीषम की लड़की रुक्मिणी को लेने गया है श्याम एकदम से बलराम ने हल मूसल उठाया और घोड़ा पर सवार होकर भाग दी बलराम का हथियार था हल और मूसल हल में खोपड़ी फंसा लेते तो मूसल की ठोंक लगा देते थे जाकर के जहां लाश पर लाश लगी वहां पहुंचे कन्हैया ने जोश बलराम को देखो एकदम कहने लगे ओरी गजब हो और रुक्मिणी कहने का बात है भैया आ गए भगवान रथ के पीछे खड़े हो गए बलराम ने आते आते कहा श्याम तूने हीरों की नाक कटा दी अरे किसकी लड़की को भगा लाया तू अब कन्हैया रथ के पिछेला से निकल के बोले भैया मेरे दोस्त नहीं तो जाने चिट्ठी भेजी थी बलराम कहने लगे क्यों लड़की तूने अपने माँ बाप के नाम पर पानी फिरा कर मेरे श्याम को भी बदनाम कर दिया एकदम से अपने जेठ को देख करके रुक्मिणी ने घूंघट मार लियो और आंखन में आंसू भर के बोली दादा मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिशपाल के साथ में करना चाहता था मैंने अपने शत्रुत्व की रक्षा के लिए आपके श्याम सुंदर के चरणों की दासी बन गई हूँ बलराम कहने लगे क्या कहा तेरा भैया तेरी शादी अपने साले के साथ में हाँ
बलराम कहने लगे तो चिंता मत कर बहू हम तेरे भैया के दांत इकट्ठे कर देंगे
और तब तक शिशपाल ने चारों तरफ से आकर के घेर लिया कृष्ण और बलराम
शिशपाल कहने लगा जो लंबी थोंद वाला कौन आ गया
ए नौजवानो जो लंबी थोंद वाले की थोंद में भाला भोंक दो और जो काले कलूटा को हाथी से मरवा के दे लड़की को छीन लो
अब भगवान कन्हैया की तरफ देखे बलराम कहने लगे कन्हैया तुम बहू को छोड़ के लड़ने मत जाना इतने धान मेरे मूसल के लिए ज्यादा नहीं है
टूट पड़े जवान और वर करके जानू रे दाऊ पे धर के तुझे के
आए पूरा बच्चे दे भारत हराया योर पश्चिम को चले जाए और छे दे तो न फांस मूसल में ऊपर से दे फोंग लगाए अब जरे हाथ ये के मूसल बैठे लड़ में चीखे और मर जाए अब जो न ऊंट में मूसल बैठे लंबी भी चनवर हो जाए अब जरे घोड़ा में मूसल बैठे चारों सुम गरा हो जाए
मैदान साफ हो। शिशुपाल ने देखा हमारी फौज समाप्त, एकदम बलराम के सामने जाकर कहने लगा सिपाहियों को मारने से नहीं फायदा, मेरे सामने आ जा।
बलराम कहने लगे दिल के अरमा पूरे कर लो दोस्त, वरना बाद में तुम्हारे मन में कोई अरमा रह जाए।
हड्डी को सोना मादा हो बनाए और पैरों खाली है सच पालम के जान से भाग्यो लुभेरा है
सिस्तान मैदान छोड़ के भाग गया लोगों। अब रुकुम ने संकल्प किया कि अगर कृष्ण और बलराम में से दो में से हमने एक को न मारा तो हम जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाएंगे। और जहां भगवान कन्हैया रुक्मिणी के पास बैठे थे, रुक्म सामने पहुंचा कहने लगा मेरी बहन को घेरे क्या बैठा है, नीचे आ जा, अगर तू जीत जाए तो मेरा बहन हुई है, वरना मेरे हाथ में तेरी मौत है।
भगवान कन्हैया मुस्करा के कहने लगे तो तुम हमसे लड़ना चाहते हो,
हाँ आ जा नीचे। जो भगवान कन्हैया नीचे कूदे, रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली, श्याम 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 नहीं जाने दूंगी, क्यों छोड़ मेरी कलाई, मेरी कलाई को पकड़ रही है तू। रुक्मिणी कहने लगी नहीं
मेरे भैया जबरु तुम हलके हो पिया चल जाइयो, मेरे भैया जबरु तुम हलके हो पिया चल जाइयो, ओ सामरिया तेरे हाँ तुम बेसिन तो बोली सकल के हो भैया जबर तुम हलके हो पिया फिर जइयो मेरे भैया जबर तुम नेकी पति जो कंठ हो जाए है सासु की देहरी जा देख नहीं पाए है जो अखियन के पल के बोलिया चल जइयो मेरे भैया जबर तुम हलके हो पिया चल जइयो मेरे भैया जबर तुम ओ आधार उनका बाज के आइए।
अरे बात का है, कम से कम बात तो बताओ। बोलो बोलो बोलो
मेरे श्याम को तू समझे तुम बैसूते कल के बोलिया चल जइयो मेरे भैया जबर तुम कल के हो पिया चल जइयो मेरे भैया जबर तुम
भगवान श्याम सुंदर कूद पड़े हैं और कूद करके मेरे नौजवान साथियों आज रुकुम से लड़ने लगे। बहुत देर तक लड़ते रहे, बाद में रुकुम को धरती पर पटक दिया, भगवान श्याम सुंदर छाती पर बैठ गए रुकुम को मारने के लिए। तब तक रुक्मिणी आई और अपने पिया के सामने अपने आंचल को फैला के कहने लगी कंठ मारो नहीं भैया को, क्यों
जब जो कछु गलती बनी माफ कर दीजे,
कहने लगी
मेरे भैया की भीख कंठ मोह दीजे,
कन्हैया की भीख मुझे दे दो।
महाराज के जब मैं पियर में आऊंगी मेरी सखिया बोले बोले होने में कहा लताऊंगी। कंठ जब पियर में आऊंगी श्याम तब मन में मुस्काए रस्सी एक तुरत भैया वो उठाए कर लाए। हाथ बके दोनों बांधे हैं और उपा को लेके चले के साले तुम धर कर कांधे हैं के रथ के पीछे चारो है और रुक मेरे कहे मत मारो नाथ तुम्हारो चारो है।
भैया इस तरह से रथ के पीछे बांध दिया हुआ क्या और तब तक हाय बलराम पास बार रथ के आए गए हैं रे पास बार रथ के आए और रुकम को बंधो तो देख बचन ये फरमाए कन्हैया कहाँ करवाओगे और रिश्ते में ये करो बिहार में कहाँ बुझाओगे। बात समय लकी आए मानी और रुकम को छोड़ो है हरने पर एक बात कानी और मुझे करके साम छोड़ दो शाले को भाई हरी हर बोलो मेरे भाई और कर्म देखना मिले करो कर लाभ चतुराई हरी हर बोलो मेरे भाई। क्या हुआ भगवान रुक्मिणी को ले जा करके द्वारकाधीश द्वारका में वैदिक रीति से उनके साथ विवाह कर लेते हैं।
रुक्मिणी विवाह की कथा रे मेरे मित्र सुनाए गई गाके घड़ी रही है भैया पूरे चारी वादे बजा के नरनार करो यार राम रे शादी तो अब घर जाके महाराज सुनाई गई मैंने लीला भरपूर तो सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माप कसूर करिया नांगिन बन के दस गई वो हन तेरी बांसुरिया करिया नांगिन बन के दस गई वो हन तेरी बांसुरिया तेरी बांसुरिया रे नसी रे तेरी बांसुरिया करिया नांगिन बन के दस गई वो हन तेरी